नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है, और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत आज बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। ये टूर्नामेंट पूरे इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है और इसका फाइनल अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।